एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो।
जीवन बंधन थे कितने सारे, ओ, 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 एक समय था पापी था जीवन बंधन थे कितने सारे, तम से निकला जीवन मेरा, तम से निकला जीवन मेरा, आई है
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम आज उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जो हम सबों को बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, हम सब तेरे पास आते हैं, तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। पिता हमारे मन और हमारे हृदय को खोल दे और हमें तेरे वचन को समझने के लिए मदद कर। विशेषकर मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें तेरा वचन समझने के लिए और तेरा राह में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग पिता तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है चर्च उग्रवादी। शायद आपको इस शीर्षक को सुनकर कुछ आश्चर्य सा लग रहा होगा, पर आज का अध्ययन बाइबल से जो हम करने जा रहे हैं हमें समझने में मदद करेगा कि चर्च, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली समूह है, कैसे उग्रवादी होती है या किसके प्रति उग्रवादी होती है। इसके लिए आज हम बाइबल से 7 कलीसिया के बारे पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में मिलती है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 पद में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यह प्रभु यीशु का वचन है जो वह अपने कलीसिया लौदीकिया कलीसिया से कहते हैं। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। यूहन्ना, जो यीशु मसीह का एक चेला था, 12 प्रेरितों में से अंतिम मरने वाला था। सुसमाचार और अपने नाम से लिखे गए पत्रों को लिखने के साथ साथ उसने प्रकाशित वाक्य भी लिखा, जो महान विवाद को समझने में हमारी बहुत मदद करता है। हालांकि अभी के लिए हम केवल 7 कलीसियाओं के उनके वर्णन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम उनका अध्ययन मूल प्राप्तकर्ताओं के दृष्टिकोण से करेंगे, ताकि हम उनके शब्दों से जितना संभव हो सके उतना सीख सकें। एक बात जो सबसे अलग है वह यह है कि यीशु हर कलीसिया के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्तिगत बनाता है। उन सभी की जरूरतें अलग अलग हैं और वह उन सभी को पूरा करता है। एक चुनौती यह है कि यह चर्च अपनी पहचान के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम आज कर रहे हैं। कई मानियों में हम कुछ ऐसी ही चुनौतियों का सामना करते हैं जिनका सामना चर्चों ने युगों से किया है। आइए हम पहला कलीसिया या पहला चर्च इफिसस के बारे में पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 2:1 में यीशु को 7 तारे पकड़े हुए और इफिसुस में कलीसिया को संबोधित करते हुए दूतों के बीच चलते हुए चित्रित किया गया है। ये प्रतीक महत्वपूर्ण वास्तविकताओं की ओर इशारा करते हैं। दीवटे कलीसियाएं हैं और 7 तारे स्वर्गदूत हैं, जिन्हें कलीसियाओं को देखभाल करने का काम सौंपा गया है, जिसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1:20 में। दूसरे शब्दों में कलीसियाओं और स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। इस महान विवाद में कलीसियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रकाशित वाक्य 2:1-7 में हम महान विवाद को देखते हैं। इफिसुस को दिया गया संदेश उसके चरित्र के वर्णन से शुरू होता है। यीशु उसकी ताकत और कमजोरियों से पूरी तरह वाकिफ है। वह उनकी गतिविधियों, उनके धैर्यपूर्ण दृढ़ता और उनके बीच में झूठे शिक्षकों के प्रति उनकी असहिष्णुता के लिए उनकी सराहना करता है। प्रकाशित वाक्य 2:2-3 और 6 पद में एक स्पष्ट चेतावनी कि चर्च में झूठे सिद्धांत को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इफिसुस की कलीसिया, जिसे मूल रूप से अंधकार के विरुद्ध संघर्ष में परमेश्वर द्वारा भर्ती किया गया था, शैतान द्वारा जवाबी हमले का सामना कर रही है। इफिसियन चर्च के साथ समस्या यह थी कि उनके अपना पहला प्यार छोड़ दिया था। उसने अपना पहला प्यार छोड़ दिया था, जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2:4 में। यह पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की भाषा के समान है, जिन्होंने इज़राइल के धर्म त्याग की तुलना अवैध प्रेमियों के पीछे भागने वाले व्यक्ति से की थी। उदाहरण के लिए होशे 2:13 में हमें मिलता है, परिस्थिति निराशाजनक लग सकती है, लेकिन यीशु निराशाजनक परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने में माहिर हैं। सबसे पहले वह अपने लोगों को यह याद रखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे कहां से गिरे हैं और वे जो पहले कर रहे थे उसे फिर से शुरू करें। प्रकाशित वाक्य 2:5 यह घड़ी को अच्छे पुराने दिनों में वापस लाने का आह्वान नहीं है, बल्कि यह अतीत के अनुभव का उपयोग करके उन्हें भविष्य में मार्गदर्शन करने का मामला है। आगे हम पढ़ेंगे स्मरना और पर्गामम चर्च या कलीसिया के विषय में। ये दूसरे और तीसरे कलीसिया हैं। स्मरना की कलीसिया के लिए यीशु का परिचय प्रथम और अंतिम, जो मर गया था और फिर जीवित हो गया, के रूप में दिया गया है प्रकाशित वाक्य 2:8 में और प्रकाशित वाक्य 1:18 में। पिरगमुन की कलीसिया के लिए यीशु वह है जिसके दांतों में तेज दोधारी तलवार है, प्रकाशित वाक्य 1:16 और 2:12। इन दोनों कलीसियाओं के लिए यीशु का वर्णन जिस प्रकार किया गया है उसका काफी महत्व है। प्रकाशित वाक्य 2:8-17 में हम स्मरना के चर्च के सदस्य के विषय में पढ़ते हैं। स्मरना के चर्च के सदस्य भी अपनी कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, फिर भी उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। शायद उनके बीच में शैतान की आराधनालय के परिणाम स्वरूप प्रकाशित वाक्य 2:9 में हम पाते हैं। इस तरह पिरगमोन के सदस्य अपने विश्वास से चिपके हुए प्रतीत होते हैं, भले ही शैतान का सिंहासन उनके बीच में है, प्रकाशित वाक्य 2:13। इस प्रकार महान विवाद की वास्तविकता यहाँ भी देखी जाती है। स्मरना के चर्च को आने वाले कठिन समय के बारे में चेतावनी दी गई है, जिसमें जेल और शायद मौत भी शामिल है, प्रकाशित वाक्य 2:10। पिरगमुन में पहले ही किसी को उसके विश्वास के लिए मार दिया गया था, प्रकाशित वाक्य 2:13। चिंता की बात यह है कि परमेश्वर के पास पिरगमुन की कलीसिया के खिलाफ कुछ बातें हैं, जो हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 2:14-16 में। जाहिर है कि वे अपने बीच में ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं जो बलाम की शिक्षा और निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:14-15 में हम यह पढ़ सकते हैं। निकोलस और बलाम समांतर शब्द प्रतीत होते हैं। निकोलस एक मिश्रित यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है वह जो लोगों पर विजय प्राप्त करता है। बलाम को दो हिब्रू शब्दों से लिया जा सकता है जिसका अर्थ है लोगों का विनाश। यीशु पूरे चर्च को चेतावनी देते हैं कि यदि उनका पाखंड जारी रहता है तो वह व्यक्तिगत रूप से आएंगे और उनके खिलाफ अपने मुंह में तलवार से लड़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:16। फिर भी इन चेतावनियों के बीच भी यीशु दोनों कलीसियाओं को बड़ा प्रोत्साहन देता है। प्रकाशित वाक्य 2:14-15 के आयतें हमें बताती हैं कि सिद्धांत महत्वपूर्ण तरीके से मायने रखता है। आइए हम आगे थुआटीरा और सार्दिस कलीसियाओं के विषय में जानें। प्रकाशित वाक्य 2:18-3:6 में इन कलीसियाओं के विषय में हम पढ़ पाते हैं। थुआटीरा की कलीसिया में यीशु का परिचय प्रकाशित वाक्य 2:18 परमेश्वर के लोगों के लिए एक कठिन और उलझन भरा समय दर्शाता है। ज्वलंत आंखों और पॉलिश किए हुए पीतल या कांसे के पैरों के रूपक न केवल प्रकाशित वाक्य 1:14-15 में दिखाई देते हैं बल्कि मूल रूप से दानियल 10:1-21 में भी पाए जाते हैं, जहां दानियल एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसकी आंखें आग की मसालों की तरह हैं और उसके पैर चमकीले पीतल की तरह हैं, दानियल 10:6। बाद में समय के अंत में मसीह उठेगा और अपने लोगों को बचाएगा। जब परमेश्वर के लोगों के लिए स्थिति सबसे अंधकारमय होती है तो परमेश्वर स्वयं सीधे उन लोगों को बचाने के लिए कदम उठाएगा जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए पाए जाते हैं, दानियल 12:1 में हम पाते हैं। सर्दिस की कलीसिया में भी यीशु का परिचय इसी तरह से दिया गया है क्योंकि उसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। प्रकाशित वाक्य 3:1-5:6 में हम यह पढ़ पाते हैं। यहाँ भी एक उद्धारकर्ता है जो पर्दे के पीछे सक्रिय रूप से शामिल है और अपनी कलीसिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ग की शक्तियों को शामिल कर रहा है। इन दोनों कलीसियाओं का वर्णन बहुत चिंताजनक है। थुआटीरा में हालांकि हालत सुधर रहे हैं, वे रानी इजबेल के समय के इज़राइल की तरह हो गए हैं, इसी तरह सार्दिस में भी लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। इन सभी मुद्दों के बावजूद यीशु कलीसियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। वह थुआटीरा में बहुत से लोगों को स्वीकार करते हैं जिन्होंने शैतान की गहराइयों को नहीं जाना है और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि जब तक मैं ना आऊं तब तक दृढ़ बने रहो। प्रकाशित वाक्य 2:24-25 में सार्दिस में भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। प्रकाशित वाक्य 3:4 में हम यह पढ़ते हैं, ये वे वफादार लोग हैं जिन्हें यीशु ने विशेष आशीर्वाद देने का वादा किया है। वह थुआटीरा को भोर का तारा देने का वादा करता है जिसे बाद में वह खुद के रूप में पहचानता है। प्रकाशित वाक्य 22:16 में और सादिस को वह स्वर्ग में एक सुनिश्चित स्थान देने का वादा करता है और यह कि वह उनके नामों को मेरे पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा। दृढ़ता से पकड़ो और पश्चाताप करो, इन कलीसियाओं को ये संवाद दिए गए थे। आपको किस बात को दृढ़ता से थामे रखने और किस बात का पश्चाताप करने की जरूरत है यह अपने जीवन में सोचिए। ये दोनों बात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे हम 6 कलीसिया को देखेंगे जो है फिलाडेल्फिया का कलीसिया। प्रकाशित वाक्य 3:7 में यीशु का परिचय इस कलीसियाओं से इन शब्दों में दी गई है जो पवित्र और सत्य है और जो दौड़ की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मसीह के वचन को मानने और उसके नाम को नकार ना देने के लिए कलीसिया की सराहना की जाती है। इस कलीसिया को सराहना की जाती है भले ही उनकी ताकत काफी कमजोर प्रतीत है। प्रकाशित वाक्य 3:8 के अनुसार यीशु एक दिलचस्प वादा करता है कि शैतान के आराधनालय के सदस्य जल्दी आएंगे और फिलाडेल्फियाई लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रकाशित वाक्य 3:10 में यीशु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रतिज्ञा दिया है कि तूने
मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ऐसा लगता है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने पिछले कलीसियाओं की तरह ही मुश्किल समय का सामना किया है, लेकिन उनका रवैया अलग रहा है। यह पहला ऐसा कलीसिया है जिसके बारे में यीशु ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उन्हें किस तरह की कमियों पर काम करने की जरूरत है। उनके विश्वास और परमेश्वर के साथ उनके सहयोग को उद्धारकर्ता ने देखा और सराहा है। फिर से उनकी कमजोरी के बावजूद इस चर्च से विजय को दिए गए वादों में परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाया जाना शामिल है, ताकि उन्हें अब अंदर बाहर बहने की जरूरत ना पड़े। प्रकाशित वाक्य 3:12 कहता है, उन्हें दिए गए नए नामों के साथ उन्हें पूरी तरह से परमेश्वर से संबंधित के रूप में पहचाना जाता है, शायद इसलिए क्योंकि वे पहले से ही अपने जीवन के सभी पहलुओं में परमेश्वर के साथ पहचान कर रहे थे। यदि हमें स्वर्ग में जाकर रहना है तो हमें अभी उसके लिए तैयार हो जाना होगा। आगे हम देखेंगे आखिरी कलीसिया जो कि लौदीकिया की कलीसिया है। लौदीकिया में भी यीशु के कुछ वर्णन मिलते हैं। आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत, प्रकाशित वाक्य 3:14 में ये वर्णन मसीह की दिव्यता के मुख्य पहलू हैं। आमीन यशया 65:16 का संदर्भ है, जहां आमीन शब्द का अनुवाद सत्य का परमेश्वर किया गया है और यह वाचा से जुड़ा हुआ है। यीशु महान वाचा पालन करने वाला परमेश्वर है, वह परमेश्वर जो उद्धार और पुनर्स्थापना के अपने वादों को पूरा करता है। यीशु वह विश्वास योग्य गवाह भी है जो अपने लोगों को इस बारे में गवाही देता है कि परमेश्वर वास्तव में कैसा है। वह सृष्टिकर्ता भी है, कुलुसियों 1:16-17 में हम पढ़ते हैं। यीशु इस कलीसिया को क्या करने के लिए कहता है उसे हम प्रकाशित वाक्य 3:14-22 में पाते हैं। आज यह हमारे लिए भी है, आइए हम इसे देखें, इसे यहाँ पढ़ें। 17 में कहता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले और पहन ले, पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। इस चर्च के लोग खुद को इस हद तक मूर्ख बना रहे हैं कि वे अपने बारे में जो सोचते हैं वह उनके वास्तविक स्वरूप के विपरीत है। प्रकाशित वाक्य 3:17 इस चर्च को जो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाले जाने के इतने करीब है, सबसे महान वादे दिए गए हैं। यीशु उनके साथ भोजन करना चाहता है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम इसे पढ़ते हैं, कुछ ऐसा जो केवल करीबी दोस्तों के लिए आरक्षित है। फिर वह उनसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अवसर देने का वादा करता है। 7 कलीसियाओं के माध्यम से परमेश्वर के लोगों के ठंडे होते जाने और उससे दूर होते जाने की विकासशील घटना का पता लगाना दिलचस्प है। यह कैसे होता है? ऐसा लगता है कि हालांकि लड़ाई जीत ली गई है, फिर भी कुछ लोग अभी भी लगातार बुराई और अंधकार की शक्तियों से चिपके हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम इन कलीसियाओं के इतिहास को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि महान विवाद वहां प्रकट हुआ है और व्यक्त किया गया है, और इस प्रकार यह यीशु के दूसरे आगमन तक जारी रहेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, खुशखबरी यह है कि यीशु अपने लोगों की कमजोरियों को दूर करने के लिए आया और उनका मदद करने के लिए आया और उन्हें विजय दिलाना चाहता है। इसलिए आइए हम उसके पीछे आए और उसके बातों को माने और उस पर भरोसा करें। वह हमें निश्चित बचाएगा। इसलिए प्यारो, फिर से यह हमें संदेश संवाद मिलता है कि हम अपने जीवन में बुराइयों को पकड़े ना रहे, बल्कि यीशु के पास आए, उसमें विश्वास करें, उस पर भरोसा करें, ताकि वह हमें अपना धार्मिकता दे और हमें जीवन का रास्ता में ले चले और अनंत जीवन दे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास फिर से आते हैं। हम सबों को तू ग्रहण कर, तेरा वचन जो आज हम सुने पिता, तू अपने लोगों के पास आता है, उन्हें तू बुराई से छुड़ाना चाहता है, तू अपने पास ले जाना चाहता है। हम भी अपने स्थिति को पहचाने और तेरे पास आए, तुझे पकड़े कि हम तेरा धार्मिकता प्राप्त करें और तेरे स्वर्ग राज में हो सके। हम सबों को तू बहुत आशीष दे पिता। मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, तू उनके संग हो, उन्हें आशीषित कर और तेरे राह में चलने के लिए आत्मा से हम सबों को प्रभु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं, hindiarsamc@sudaventhist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा, AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें,
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।